Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled.
ये पंखे को थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में करना चाहिए.
प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इतनामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशकारिणे नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरपिषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंह दीन बंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. प्रसन्नतां यां गताभिषेकतः तथा मनिन्दे वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलिमङ्गलप्रदाम्. नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं. नमामि रामं रघुवंशनाथं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आसादु गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.
टोटल पंखा हटा देने से गर्मी होने लगी. कुछ ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी हवा आवे.
अपने परमाराध में सर्वप्रथम अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और से इस स्थान के अधिदेवता श्री श्री राधा रास बिहारी जी, श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री गौर निताई के चरणों में अपने प्रणाम निवेदन करता हूँ. और इस मंदिर के भक्तजन, विशेष करके व्यवस्थापक जन को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का यह इतना भव्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है. वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम यही दो बहुत प्रसिद्ध भगवान के स्वरूप हैं जिनके जन्म कर्म के विषय में विशेष रूप से गाया गया है. तो बहुत ही सौभाग्य है इस मुंबई के निवासियों का कि भक्तों ने श्री राम जन्मोत्सव का ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखा. और मैं विशेष रूप से ब्रजहरि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हम पर कृपा करके हमें बुलाया यहाँ. वास्तव में इस अवसर पर मेरा कार्यक्रम था लंदन में. उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ पर रहना चाहिए जन्माष्टमी रामनवमी को, तो मैं कहा ठीक है. बीच बीच में कुछ संदेह भी हो रहा था कि आएंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो कह चुका था और हमारा विशेष लगाव है राधा रास बिहारी जी से,
मैं उन्हीं की कथा को हरिद्वार में भी कहने वाला हूँ, रास बिहारी। तो रास बिहार की कथा वहां चलती। तो और भी जिन भक्तों ने इस रामनवमी महामहोत्सव को सफल बनाने में सहयोग किया है किसी भी तरह से, उन सबको धन्यवाद है। और आप सब श्रोता भक्तों को जो भगवान श्री राम की गुण गाथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सबको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम में सबका प्रेम बढ़े, यही इच्छा है। तो ऐसे रामायण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, सुप्रसिद्ध रामायण है वाल्मीकि रामायण, और अन्य भी बहुत से ग्रंथ हैं जो भगवान श्री राम पर लिखे गए हैं, बहुत बहुत। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, बहुत लिखा गया है। भागवत भी इसका प्रमाण है कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो वे कहते हैं कि परीक्षित, तुमने तो सीतापति राम का चरित बहुत सुना है, ऐसा स्पष्ट बोलते हैं, इसीलिए वो केवल 2 अध्याय में कथा कहे। और वास्तविक बात यह थी कि महाराज परीक्षित अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए व्याकुल थे, इसीलिए इसको संक्षेप में कहा गया। तो हम भगवान के लीला के एक प्रसंग को आज लेंगे, धीरे धीरे जितना संभव हो सकेगा कहने का प्रयास करेंगे। तो आज एक श्लोक की आवृत्ति है, इसको पहले कर लिया जाए।
यह सत्य पाश परवीत पितुर्निदेशान, स्त्रंगस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः, राज्यं श्रियं प्रणम्य सुहृदो निवासम्। त्यक्त्वा ययो वनमसो निवमुक्तसङ्गः, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित वन में चले गए। तात्पर्य, महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, इनमें से कैकई ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतः उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकई ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह वर मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज्य तिलक के अवसर पर कैकई ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी दे और रामचंद्र को वनवास दे। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता। आदौ राम तपो बनादि गमनम, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री राम की आदि लीला है वन में जाना। ऐसे आदि लीला तो जन्म लेना और बचपन की लीला तथा विवाह आदि की लीला है, बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। परंतु सभी लोग कहते हैं कि आदि लीला तपो बनादि गमनम, वन में जाना, ये भगवान की बहुत विशिष्ट लीला है।
जैसा गीता में भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म का उत्थान होता है उस समय मैं अपने को इस प्राकृत जगत में प्रकट करता हूँ। किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। सज्जनों की भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक संस्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अपने को प्रकट करता हूँ। जयदेव महाकवि का बहुत प्रसिद्ध है एक दशावतार स्तोत्र है, उसमें भगवान श्री राम को गिन रहे हैं श्री कृष्ण के अवतार के रूप में। जैसे हर एक पद के अंत में तो केशव धृत अमुक शरीर, जैसे केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, ऐसे ही भगवान श्री राम के विषय में है। केशव धृत रघुपति रूप राम शरीर जय जगदीश हरे, तो उसमें उन्होंने यह कहा है कि जो रावण के 10 सिर को काट करके मानो दिग्पालों को अर्पण कर रहे थे और जिन्होंने पृथ्वी के भार का हरण किया, राक्षसों का वध किया, तो भगवान श्री कृष्ण का वह अवतार श्री राम के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सुंदर लोक मंगलमय। भगवान श्री राम की लीला में एक अपनी खास विशेषता है, वह है अत्यंत सिलवान व्यक्ति, अत्यंत सुशील, अत्यंत नम्र, निष्कपट और एक पत्नी व्रतधर। भगवान श्री कृष्ण की लीला से बिल्कुल भिन्न स्वभाव ऐसे लोक में देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को यह शिक्षा देने के लिए कि एक परफेक्ट मानव को कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले चलना चाहिए, इसको प्रदर्शित किया। तो भगवान श्री राम की समस्त लीलाओं में यह लीला एक अद्भुत वैशिष्ट रखती है, राज्य त्याग देना। यह एक बहुत बड़ी बात है, जैसा इस श्लोक में लिखा गया है कि यह सत्य पास परिवीत पितुर निदेशम स्त्रणस्य चापि शिरसा जगहे सभार्जो। महाराज दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता श्री हैं, वे सत्य के पास में परिवीत थे। परिवीत का अर्थ बंधा हुआ है, सत्य उनके लिए एक बंधन हुआ, उस बंधन में बंधे थे और इस कारण से ऐसे सत्य के बंधन में बंधे हुए अपने पिता के निर्देशन आज्ञा को शिरसा सिर से अर्थात आदर के साथ जगृह स्वीकार किया भगवान राम ने। कैसा पिता अस्त्रैणस्य च अपि अस्त्रैण पिता का भी। महाराज दशरथ कैकेयी में बहुत आसक्त थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां पर कह रहे हैं अस्त्रैण। अस्त्रैण का अर्थ होता है स्त्री का गुलाम, स्त्री के बस में रहने वाला। यह जो स्त्री को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, स्त्री को पा करके ही अपने को धन्य मानता है, उसको अस्त्रैण कहा जाता है। स्त्री शब्द से ही अस्त्रैण शब्द बना हुआ। तो महाराज दशरथ के विषय में खुल करके कहना सुखदेव गोस्वामी का अस्त्रैण थे, तो यह प्रमाण है वास्तव में अस्त्रैण थे। उनकी 3 रानियां थी, 3 रानियों में कैकेयी बहुत ही सुंदरी थी और बहुत सेवा करती थी महाराज दशरथ की, तो इसलिए उसमें बहुत आसक्त थे। एक प्रकार से कहिए तो एकदम उसके कमांड में थे। से बाहर कुछ करने की शक्ति नहीं थी उनकी। तो एक बार की बात है, वे गए हुए थे स्वर्ग में, राजा दशरथ, देवासुर संग्राम चल रहा था, असुरों ने कुछ आक्रमण किया था देवराज इंद्र के राज्य पर। तो महाराज दशरथ लड़े और एक दिन की बात थी, वे बिल्कुल छत बिछत हो गए बाण लगने से। तो उस दिन कैकेयी ने उनकी बहुत सेवा किया, बाणों को निकाला, मलहम लगाया, सब तरह से सेवा किया। तो उसकी सेवा से बहुत आभारी हुए, बहुत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमसे दो वर मांगो, मैं अपनी शक्ति भर दे सकता हूं, तुम दो वर मांगो। लेकिन वास्तव में वह स्त्री पति से प्रेम करती थी, तो उसने टाल दिया, कहा कि नहीं, हम क्या मांगे आपसे, जब आप ही हमको मिले हुए हैं तो हमें नहीं चाहते। वास्तव में कैकेयी की तरफ से यह दोष नहीं था, वो नहीं चाहती थी वरदान। लेकिन राजा दशरथ कहा नहीं, मांगो मांगो, तुम्हारे सेवा के भार से मैं बहुत दबा हुआ, कुछ दे करके ही मेरा जी हल्का होगा। तो उसने कह दिया ठीक है, कभी बाद में मांग लूंगी। नहीं मांगने का उसका मूड था, टाल दिया, ठीक है बाद में मांगूंगी। तो राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, यह उनकी गलती थी। पत्नी हो चाहे कुछ भी, किसी को यह कह देना कि तुम कुछ भी मांगो, इतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए स्त्री को, स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए इतना। हाँ, ये सत्य बात है, जो शास्त्र की बात हो मैं कह रहा हूं, कितनी भी पतिव्रता स्त्री हो, कितनी भी प्रेमी हो, लेकिन टोटल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने छोड़ दिया, वो समय बीतता गया। जब मंथरा की नदी को सरस्वती जी ने फेरा, मंथरा लगी कहने ऐसा होगा ऐसा होगा, यदि राम राजा बनेंगे तो भरत उसी दिन कारागृह में जाएंगे, वो कैकेयी से कहने लगी। बहुत तर्क की है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी, बहुत विस्तार से उसका वर्णन है कन्वर्सेस। किसी तरह से उसने राजी कर लिया उसको, कहा कि उपाय करो जिससे कि राम को राज न दिया जाए, तुम्हारे पुत्र को मिलना चाहिए राज, भरत को। तो कैकेयी रोने लगे, क्या उपाय है, कुछ भी उपाय नहीं, आखिर वो राजा है, उन्होंने निर्णय किया है राम को राज्य देने का, तो अब क्या उपाय काम करेगा। तो मंथरा ने कहा कि रानी जी, आपको याद है एक बात आपने कहा था कि आपके पति ने आपको दो वर देने को कहा था, तो आपने कहा था कि बाद में मांगूंगी, ये बात हमको आपने सुनाया था। तो कैकेयी कहते हाँ हाँ, वो बात मैं तुमको सुनाई थी। तब तो मंथरा ने कहा कि एक वर तो ये मांगो, पहले ये मांगना कि भरत को राज दीजिए और दूसरे से राम को वनवास, दो वर मांगो। देखिए कैकेयी जैसी स्त्री की बेवकूफी, जब पति से एकांत में बात हुई है, इतना महत्वपूर्ण बात, मैं कुछ भी दूंगा तुम मांगो, तो इस बात को जो पति के साथ हुई है वो थर्ड क्लास की दासी से कह दी, क्या जरूरत है उसे कहने की, यही है स्त्री की बुद्धि। देखिए अगर वो मंथरा को नहीं कही होती ये बात, तो ये सब गड़बड़ी नहीं होती, भगवान वन में नहीं गए होते। जब पति के साथ इतने घनिष्ठ इंटीमेट बात हो रही है, तो उसको एक दासी से कहना, और इस हिसाब से हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा ऐसा कहे है हमको, दो वर भी देने को कह रहे थे लेकिन मैंने मांगा नहीं, वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार। यही है कमजोरी मनुष्य की, वो चाहे स्त्री जाति का हो चाहे पुरुष जाति का हो, लेकिन नीच व्यक्ति से अपनी गुह्य बातों को नहीं कहना चाहिए, ये शास्त्र शिक्षा देता है। तो इसने याद दिलाया कि दो वर मांग लो। इसके बाद कहीं कहीं ने जाकर के वर मांगा महाराज दशरथ से। उसको पूरा पूरा विश्वस्त कर दिया था मंथरा ने कि राजा दशरथ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है और कौशल्या की योजना से राम को राज्य दिया जा रहा है। उसने कहा कि हमको कोई दुख नहीं है कि राम को राज दिया जाए, लेकिन तुमसे कपट क्यों किया जा रहा है, इस बात का हमको दुख। ऐसी बात बोली कि कैकेयी का मन पूरा पूरा विरोधी हो गया। जो राम से प्रेम करते थे, महाराज दशरथ से वास्तव में प्रेम करते थे, और कौशल्या आदि अपनी सौतों बहनों के साथ उसका प्रेम था, लेकिन मंथरा की बात से नष्ट हो गई। कोन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर कौन नहीं नष्ट हो गया है, इतिहास बताता है। नीच व्यक्ति से कोई परामर्श ले तो नष्ट हो जाएगा। कैकेयी को वही मंत्री मिली थी मंत्रणा करने के लिए, और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब भगवान श्री राम वन में चले गए, सब पता चल गया कि ये मंथरा का प्लान था, मंथरा के ऐसा ऐसा किया, तो लोग पूछने लगे कि कहाँ की है, इसका आईडी क्या है, ये कहाँ, इसका बायोडाटा क्या है, सब पूछने लगे। तो किसी को पता नहीं था, कैकेयी तक से पूछा गया कि ये कहाँ की है, उसके पीठ पर कुबर था, ये कहाँ की है, किस जाति की है, कब से तुम्हारे परिचय हो, तो कैकेयी को भी पता नहीं था। इस तरह अनजान औरत को इतना इंटीमेट बना लेना एक दिन खतरा पैदा कर दिया। तो पता होना चाहिए किस खानदान का है, कहाँ का है, कौन कहाँ का है, पर पूरा पता होना चाहिए। और उस दिन पता लगा कि किसी को पता नहीं था कि मंथरा कहाँ से आ गई थी और कैसे सेवा करने लगी थी। वाल्मीकि रामायण में बात लिखी गई है। तो जो भी हो, रहाई में नीच मते चतुराई, नीच व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, और कोई भी परामर्श ओपिनियन उससे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो ऐसे इसको मिलाकर कह सकते हैं कि यदि कैकेयी ने मंथरा की बात को नहीं सुना होता तो उसकी बुद्धि खराब नहीं होती। महाराज दशरथ की अपनी कमजोरी थी कि वे एक्सेसिव अटैच्ड थे, बहुत ज्यादा कैकेयी में अटैच्ड थे, और इसलिए उन्होंने वर दे दिया था। किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को इतना ही कहना चाहिए कि ठीक है, हमारी इतनी औकात है, हमारी इतनी शक्ति है, इसके अंदर कुछ मांगो मैं दे सकता हूं। ऐसे कुछ भी मांगो, ये तो कहने का अधिकार किसी को नहीं, तो केवल भगवान मांग सकते हैं किसी से कुछ भी दो। ये कह देना कि तुम कुछ भी मांगो, चाहे पुत्र के लिए चाहे पत्नी के लिए, कहना यह अपराध है। वास्तव में हमारा जीवन कृष्ण के लिए है, भगवान के लिए, न कि पत्नी के लिए है, ये समझना चाहिए। तो महाराज दशरथ की एक कमजोरी थी, यद्यपि वे भगवान के परम प्रेमी थे, भगवान श्री राम में उनका बहुत अनुराग था, चार दिन बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया उन्होंने। राजा दशरथ का ऐसा प्रेम था, बंदन अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रियतम त्रिनयन परिहरई। महाराज दशरथ अपने प्रिय शरीर को राम के वियोग में तृण की तरह त्याग दिए, इतना प्रिय देह। तो प्रेम तो भगवान से था, लेकिन जीवन में कमजोरी थी कि वे अपनी स्त्री में बहुत आसक्त थे, कैकेयी में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्त्रैणस्य च अपि, स्त्री में आसक्त अपने पिता का आदेश भी भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। पिता का आदेश स्वीकार किया कैसे, पिता का, स्त्रैण पिता का। तो भगवान श्री राम के लीला में जीवन में यह शुभ गुण बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपि शब्द से, कि किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह वास्तव में सुशील पुत्र बने, पिता के दोषों को न देखें। भगवान श्री राम कभी भी किसी भी समाज में यह नहीं कहे कि मेरा पिता लंपट है स्त्री में और स्त्री के कहने से हमको वन में खदेड़ दिया। ऐसे कभी नहीं कहे। किसी से बात होती थी तो कहते थे पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, ऐसे बोलते थे। पिता दिन मुहि कानन राजू, ऐसा वो स्पष्ट बोलते, पिता ने हमको वन का राज दिया है। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना, कहना। वन भी एक विभाग है जिसके मंत्री होते हैं, फॉरेस्ट मंत्री होते हैं, तो वो भी एक राज्य है। तो भगवान श्री राम ऐसे कहते थे कि पिता ने मुझे वन का राज दिया है, यह आदर्श था। तो इस तरह से जीवन में एक सुशीलता आनी चाहिए, सील कहते हैं, सुंदर स्वभाव, माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, बड़े भाई के प्रति। ये दोष दृष्टि करना एक बहुत बड़ा पाप है। इससे होता क्या है कि आदमी का अपना जीवन दोषों से भर जाता है। भगवान इस बात की शिक्षा दे रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी इस बात को स्पेशल बोल रहे हैं, स्त्रैणश्च अपि निदेशम शीर्षा जगृहे। स्त्रैण पिता के आदेश को भी भगवान श्री राम ने सिर से स्वीकार किया और अपनी पत्नी के साथ, सौ भार्य भार्या के साथ, सीता के साथ वनम जयौ, वन में चले गए। क्या क्या त्याग करके चले गए, एक सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, राज्यम श्रियम प्रणयम सुहृद निवासम। भगवान श्री राम राज्य को छोड़े, पूरा अयोध्या का राज्य ऐसा था कि दशरथ धन सुनी धनद लजाई, कुबेर जी भी लज्जित हो जाते थे, इतना धनी थे महाराज दशरथ। वह राज्य वैभव अवध का वह राज्य अद्भुत था, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। और एकादश स्कंध में कहा गया है कि भगवान श्री राम ने ऐसा राज्य त्यागा जो देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ है, देवताओं को भी उतना धन उतना सुख प्राप्त नहीं था, लेकिन ऐसे राज्य को तृण की तरह त्याग कर चले गए। भगवान सिखा रहे हैं ऐसे, जब वो बातचीत करते हैं महाराज दशरथ से या कैकेयी से तो उनकी बातों में ऐसा प्रकट होता है। तो ऐसा मैं प्रारंभ करता हूं, जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से वर मांगा कि हमारे पुत्र को भरत को राज्य दीजिए और कौशल्या के पुत्र राम को वनवास दीजिए, महाराज दशरथ इस बात को सुनते ही मूर्छित होकर के गिर गए। बहुत देर तक मूर्छा में पड़े रहे, राम से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जैसे मछली जल से प्रेम करते, जल के बिना नहीं जी सकती, इस तरह प्रेम करते थे। तो सुने राम को वनवास देना, और उस दिन उस रात में बात हो रही थी कि अगले दिन राज देना था, कैकेयी से रात में बात हो रही थी, राज्याभिषेक की पूरी सामग्री जुटा ली गई थी, सब तरह के जो मंगल द्रव्य होते हैं, तीर्थों का जल तो पहले से रखा हुआ था और राज्य तिलक की सामग्रियां जुटा ली गई थी। कल सवेरे ही राम को राज तिलक देना था, कैकेयी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, वो महाराज दशरथ से कही साफ कहे कि हमारे पुत्र को राज दीजिए कई कन्वर्सेशन के बाद और राम को वनवास। और वे चीर वस्त्र पहने, पुराना वस्त्र या पेड़ की छाल या मृग चर्म पहने और कंद मूल खल फल वन में खाए और जटा धारण करें, कभी कम भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से दंड दिया था वास्तव में कैकेयी ने, जटिल जटा होनी चाहिए राम को और वस्त्र बिल्कुल फटा पुराना, वनवासी के रूप में उनको मतलब जोगी के रूप में वन में रहना चाहिए और राजा बनेगा मेरा बेटा। राजा दशरथ इस बात को सह नहीं सके, मूर्छित हो गए। और उसके बाद जब होश हुआ तो बिल्कुल खिन्न चेहरा उड़ चुका था, वे इस बात को कभी नहीं कह सकते थे राम से कि तुम वन में चले जाओ। तो अंत में राजा दशरथ कैकेयी के महल में पड़े पड़े बेहोश हो रहे थे, फिर होश में आ रहे थे, और कैकेयी बार बार गाली दे रही थी इनको, तुम दानी बनते थे ना, तुमने वर दिया था ना, तुमने अपने से कहा था ना कि वर मांगो, अब अपने दिए हुए वचन को या तो तोड़ो, संसार में अपजस लो, और नहीं तो सत्य प्रतीक के रूप में अपने को प्रसिद्ध करो, दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। और उसने यहां तक कह दिया कि देखिए स्त्री की तरह रोइए मत, बार बार बोल रहे थे, होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए मोर मरल राहुल अजस मृप समझिए मरमा। यदि प्रातः काल होते राम वन में नहीं गए तो मैं सुसाइड मैं आत्महत्या करूंगी, मैं मरूंगी, चाहे जहर खाकर चाहे अग्नि में जल करके जैसे तैसे या छत से कूद पड़ूंगी। स्त्री का यह बहुत बड़ा बल है, वास्तव में वो देखती है कि अब किसी तरह से काम नहीं होगा तो आत्महत्या की धमकी दो, बस पति इतने पर तो एकदम बस में हो जाएगी, मरने थोड़े देगा। वो साफ कहती है कि यदि प्रातः काल होते मुनि वेश धरी जटा आदि बना करके और मुनि के वेश में वन में राम नहीं गए तो मैं मरूंगी, मेरी लाश देखोगे समझ लो, और तुम्हारा जो न्यूज पेपर आदि में नाम छपेगा कि झूठा एक नंबर का तो वो तो अलग होगा, तुम पढ़ना या टीवी देखना कि कैसे तुम्हारा नाम आया कि अपनी पत्नी से झूठ बोला, नीच बत छोड़ कहीं के, इस तरह से बोल रहे थे। अब राजा दशरथ क्या करें, पैसे में भोर हो गया, बंदी नागद जन आए जगाने के लिए राजा को, बहुत देर तक प्रतीक्षा की। राजा बिल्कुल भोर में उठ जाते थे, मंगला आरती करते थे, लेकिन उस दिन अब तो होश में नहीं थे, बिना नहाए धोए सवेरा हो चला। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुमंत जी को जो मंत्री थे कि मंत्री जी आप जा करके महाराज को जगाइए, क्यों रात में ज्यादा जग गए थे, क्यों सो रहे हैं, किसी को पता नहीं था कि कैकेयी ने ये सब दांव खेला है। तो सुमंत गए, गए देखे तो राजा दशरथ पलंग पर ऐसे लेटे हुए थे, बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया था, बिल्कुल दुबले हो गए थे और रो रहे थे, बीच में राम राम कह रहे थे। तो सुमंत जी पूछते हैं कि महाराज आपको क्या दुख है, तो वे राम के अतिरिक्त कुछ बोल ही नहीं सके, उनको बोलने की शक्ति नहीं थी। कैकेयी कहती है तुम पहले जाओ राम को यहां हाजिर करो, बस पूछो मत राजा से, मैं कहती हूं ना मैं रानी हूं ना, आज्ञा दे तो जाकर के राम को लाओ। तो सुमंत जी अब चले गए, उधर गए, उन्होंने राम से कहा कि आपको महारानी कैकेयी ने याद किया है, अपने घर में बुलाई है। तो भगवान तो आदर्श पुत्र हैं, मां का आदेश सुने तो तुरंत चल दिए। और दिन में राजकीय पोशाक में आते थे, नहा धोकर पिता को प्रणाम करते थे, मां को प्रणाम करते थे, कैकेयी को भी प्रतिदिन प्रणाम करते थे, लेकिन उस दिन बिना जूता पहने और सवेरे सवेरे चल दिए। उनको देखा कई लोगों ने कि सुमंत जी के साथ राम जा रहे हैं, अब शकुन जैसा लग रहा था। गए वहां, कैकेयी एक बहुत सुंदर सोफा सेट पर बैठी हुई थी, कुर्सी पर बैठी हुई थी, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, बिल्कुल तन करके, उसको कोई दुख नहीं था। और राजा दशरथ पलंग पर बिल्कुल मछली की तरह छटपटा रहे थे, जल से बाहर मछली जैसे छटपटाती है वैसे छटपटा रहे थे। भगवान श्री राम गए, अपने पिता की ये दुर्दशा देख करके भगवान बहुत शोक में पड़ गए, कभी ऐसा नहीं देखे थे। पिताजी पिताजी पिताश्री कहने लगे, लेकिन महाराज दशरथ कुछ भी उत्तर नहीं दिए। जाकर भगवान श्री राम पहले चरण में प्रणाम किए, कोई उत्तर नहीं दिया दशरथ जी ने, कोई आशीर्वाद हृदय से लगाना नहीं किया। और भगवान श्री राम ने माँ कैकेयी को भी प्रणाम किया, प्रतिदिन करते ही थे, वो भी कुछ नहीं बोली, आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान पूछते हैं कि माँ, जब भी मैं मिलता था, मेरे पिताजी मुझे अपने आलिंगन में लेते थे, मुझे चुनते थे और मुझसे पूछते थे क्या खाओगे, कैसे हो, और आज हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इतना दुखी क्यों हैं? पहले जब किसी दुख में रहते थे, लेकिन जब मुझे देखते थे तो तुरंत खुश हो जाते थे, तुरंत आनंदित हो जाते थे, और आज इनको इतना बड़ा दुख है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मेरे किसी दोषपूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध है, या लक्ष्मण ने कोई गलती किया है, या हमारे स्वजनों में से किसी ने कुछ कह दिया इनको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ कह दिया है इनको? कई कई कहती है, सुनो राम, बिल्कुल निर्लज और कठोर हृदय की बन गई थी। सुनो राम, बात यह है कि राजा का तुमसे बहुत स्नेह है, और ये कुछ प्रतिज्ञा में बन चुके हैं, तुमको ये कुछ आदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो आदेश कठोर है, वो कठोर शब्द निकालना नहीं चाहते हैं तुमको। तुमने, तुम्हारा धर्म है अपने पिता की बात को मानना, उनकी सेवा करना, और तुम पूछोगे तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या तुम सुनना चाहते हो मुझसे, क्या ये कहना चाहते हैं, तुमको क्या आज्ञा देना चाहते हैं, इसको तुम सुनना चाहते हो? भगवान श्री राम तो पूर्ण आनंद घन है, उनको कोई दुख नहीं था। भगवान कहते हैं कि माँ, क्यों नहीं, अगर पिता का आदेश है तो तुम सुनाओ। अरे मैं पिता के आदेश से अपना मस्तक दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं इनके हित के लिए, यह शरीर इन्होंने दिया है, भगवान ऐसे बोलते हैं, इन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा सब किया, इनके लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं, तुम बताओ क्या बात है। तो कहती है, देखो राजा का तुमसे बहुत स्नेह है, एक कठोर बात कहना चाहते हैं, इनका निर्णय है लेकिन कह नहीं पाते हैं, अगर तुम योग्य पुत्र हो तो उसको पूरा करो, पूरा करो, और सुनना चाहते हो कि क्या आदेश देना चाहते हैं? भगवान ने कहा, हाँ हाँ मैं सुनना चाहता हूं। तो सुनो, द्वासुर संग्राम में मैंने इनकी बहुत सहायता की थी, इनकी सेवा की थी, तो हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए थे, इन्होंने मुझे दो वर देने को कहा था, मैंने कह दिया कि कभी बाद में मांग लूंगी, तो वही दो वर मैं मांगी हूं। फिर पूछती है, सुनना चाहते हो क्या वर मांगी हूं? भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हारा जो अभिषेक होने वाला है आज राज तिलक, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, मैं इनसे मांगी। और दूसरा वर मैंने मांगा है, तुमको बहुत कठोर लगेगा, तुम 14 वर्ष वनवासी के वेश में बहुत हीन कपड़ा पहन करके, जटा बना करके, शरीर का कोई संस्कार नहीं, वन में रहोगे, ये स्वीकार है तुमको? देखो तुम्हारे पिता तुमसे नहीं कह सकते इस बात को, क्योंकि उनके लिए बहुत दुख की बात होगी और तुम्हारे प्रति बहुत उनका प्रेम है, लेकिन तुम अगर योग्य पुत्र हो तो अपने पिता के धर्म का पालन करो, ये कहे या नहीं कहे, तुम आज ही चले जाओ वन में, तैयार हो? और फिर कहते हैं, देखो योग्य पुत्र वो है जो अपने पिता की मदद करे, तुम्हारे पिता नरक में गिरने वाले हैं झूठ बोलने पर, अगर तुम बिना कहे वन में चले जाते हो तो तुम्हारे पिता को नरक नहीं होगा, तुम इनको बचाओ, इनको बचाओ, झूठा बनने से बचाओ। भगवान श्री राम ने कहा कि इतनी थोड़ी सी बात, इसी थोड़ी सी बात से पिता को इतना दुख है। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूं, मैं अयोध्या से अभी निकल रहा हूं, मैं वन में चला जाऊंगा, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात। भगवान आनंद में बोल रहे थे, कई कई बहुत क्रोध में थे, और भगवान ने ये कहा कि मां तो इस बात को तुमने क्यों नहीं स्वीकार, तुम क्यों नहीं शुरू में हमें बताई, या जब ये उन्होंने, जब तुमने वर मांगा तो मेरे पिताजी को कहने की क्या जरूरत है, तुम कह दी होती, हमको कह दी होती कि तुम वन में जाओ तो पिता को तो दुख नहीं हुआ होता ना, तुम जिस दिन कही होती मैं उस दिन चला जाता, तुमने क्यों इनको कहा, राजा को क्यों दुखी किया। मैं तुम्हारी बात भी उसी तरह से स्वीकार करूंगा जैसे कौशल्या की बात या महाराज दशरथ की बात मैं स्वीकार करता हूं, मेरे दृष्टि में कौशल्या और कैकेयी में कोई भेद नहीं है। तुमको पहले कहना चाहिए हमसे कि तुम वन में चले जाओ, इनसे नहीं कहना चाहिए था। भगवान श्री राम कहते सुनु जननी सुई सुत बड़ भागी जो पितु मात चरण अनुरागी। सुनो जननी, जननी कह रहे हैं भगवान, यद्यपि जन्म कैकेयी से नहीं हुआ था, जननी का अर्थ होता है जिसने जन्म दिया है। तो हे जननी सुनो, सही सुत बड़भागी वही पुत्र महाभाग्यवान है जो पितुमात वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। माता पिता अगर कोई आज्ञा दे पुत्र को तो उसमें अनुचित उचित विचार तभी जे पाल पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के वश ही अमर पति आए। एक जगह कहा गया है कि जो पुत्र पिता के वचन को यह उचित है या अनुचित है ये विचार न करके सीधा पूरा करते हैं तो भाजन सुख सुजस के, तो उनको सुख और सुजस मिलता है, कीर्ति मिलती है, और वश अमरपति आयन, फिर बाद में इंद्र का लोक मिलता है, अमरपति का लोक मिलता है। ऐसे ही पिता क्या आज्ञा दे रहा है इस पर विचार नहीं करते, तो अनुचित उचित विचार तज जे पाल पितु गायब ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति आए। यह इतिहास बताता है महाराज जजाति ने अपने पुत्र को पुरु को कहा कि बेटा विषय भोग से मेरा चित्त भरा नहीं है, तुम अपनी जुआवस्था दे दो, कुछ काल तक मैं तुम्हारी जुआवस्था से संसार का भोग भोगना चाहता और तुम मेरी बुढ़ापा स्वीकार कर लो। पुरु ने तुरंत मान लिया इस बात, ऐसा बेटा जो स्वयं बूढ़ा बन गया तुरंत और अपनी जवानी अपने पिता को दे दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुरु ने गलती किया, आजकल के लोग कहते हैं अपने पिता को जवानी अपनी दिया तो उसी के मां के साथ संभोग करते थे उसके पिता, तो एक प्रकार से पुत्र कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा शास्त्र में नहीं कहा। तनय जजाति ही जौवन दयऊ पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, न तो पुरु को पाप लगा न अपजस हुआ, सब लोग बल्कि प्रशंसा करते हैं, धन्य है पुत्र जो अपने पिता को जवानी दे दिया। इस तरह के पुत्र हुए हैं, तो भगवान श्री राम भी उसी तरह के पुत्र हैं जो पिता के धर्म के निर्वाह के लिए वनवास स्वीकार किए। ये तो ज्येष्ठ पुत्र थे, राज्य वास्तव में उनका था और उस पर भी राज देने का दिन निश्चित कर दिया गया था, जिस दिन राज देने का निश्चय किया गया था उसी दिन वन में चले गए। इस तरह से तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनु जननी सई सुत बर भागी जो पितु मात वचन अनुरागी, तमय मात पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि मां हे जननी, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तमय मात पितु तो सनिहारा, तोष देने वाला सुख देने वाला बेटा इस जगत में बहुत दुर्लभ है। और हमने तो और हमको जो तुमने दिया या पिताजी ने दूध दिया तो हमारे जीवन में तो बहुत बड़ा लाभ हुआ। मुनिगण मिलन विशेष बना सब ही भांति हित मोर, पितु आयस तिहमह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में जाने पर हमें उच्च कोटि के संतों का दर्शन होगा, उनसे भेंट होगी, उनके मुख से सुनने को मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष बन। पहले जमाने में वस्तुन मुनि लोग या भक्त लोग साधु सब वन में रहते थे, अब तो सिटी में भी रहने लगे, पहले वन में रहते थे। तो भगवान कहते हैं कि वन में जाने पर मुनियों का दर्शन होगा, उनके मुख से सुनने को मिलेगा, सत्संग होगा, जो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि मैं धन के परवश रहूं, धन के अधीन रहूं। मेरे जीवन में साध रही है कि मैं मुनियों का जीवन व्यतीत करूं। जैसे वे कंदमूल फल खाते हैं, किसी दुकानदार से किसी दुकान से फल नहीं खरीदते हैं, वन में जो कुछ मिल गया खा लेते हैं, नदी का पानी पी लेते हैं, और यह है मुनि का जीवन, और भगवान का भजन करते हैं। तो मैं जीवन का ये लाभ अपने आप प्राप्त करूंगा। मुनिगण मिलन विशेष बना सब उभात हित मोर, सब तरह से मेरा हित होगा। और उस पर पिता का आदेश है और तुम्हारी भी सम्मति है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें रिकमेंड कर रही हो, वास्तव में आदेश तो कैकेयी का था, लेकिन भगवान कितने सुशील हैं। वो कहते हैं कि पिता का आदेश है और तुम्हारा अनुमोदन है। ऐसे समय में भी यदि जौन जाऊं बन ऐसे काजा प्रथम गनी में मुड समाजा, अगर इस अवसर पर मैं वन में नहीं जाता हूं तो दुनिया में जितने भी मूर्ख हैं उनका लिस्ट बनाया जाएगा, तो सबसे ऊंचे पर मैं रहूंगा, फर्स्ट नंबर मेरा रहेगा। ये भगवान बता रहे, अगर ऐसे समय पर भी मैं वन में न जाऊं, कितना बड़ा घाटा मेरे जीवन में होगा। भक्तों का दर्शन नहीं होगा, मुनियों से मिलन नहीं होगा, और पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा, माँ के अनुमोदन का उल्लंघन होगा, तो जीवन तो ऐसे चला जाएगा। तो मैं तो निश्चित जाऊंगा, और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये कहकर के पिताजी को प्रणाम किए। उस समय राजा दशरथ बेहोश थे, पर प्रणाम करके और कह से कहे उसको भी प्रणाम किए कि मैं अभी निकल रहा हूं, लेकिन निकलने से पहले मैं अपने माँ से कौशल्या से भेंट करूंगा और अपनी पत्नी सीता से, इन दो से मैं मिल करके निकलूंगा। यह भी पुत्र का धर्म है कि यदि गृहस्थ है तो अपनी पत्नी से बिना पूछे कैसे वन में चला जाएगा, तो पूछना, उसको आश्वासन देना धर्म था। भगवान श्री राम सबसे पहले माँ के पास गए, वो तो मनोरथ कर रही थी और उसको इस संवाद मिल गया था कि आज राजा बनने वाला है राम, तो देवताओं की पूजा कर रहे थे अपने पुत्र के मंगल के लिए। जब भगवान श्री राम गए उसके घर में, प्रणाम किए चरण छू करके, चरण में माथा रख करके प्रणाम, तो तुरंत ही गले से लगा लिया माँ और चुनने लगी मुख भगवान राम को, और कहे कि तुरंत खा लो, कैसे हो तुम। भगवान बिल्कुल उदास नहीं थे, राज्याभिषेक की बात सुन करके न तो उनका मुख खिला था और न तो वनवास का सुन करके मोरस हो गए, खिन्न हुए मुखान विजयश्री। ये भगवान आनंदमय है, उनको क्या इन सब छोटी छोटी बातों से हर्ष विषाद होगा। वो प्रसन्न थे, वो कहने लगी मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाते हूँ, भोजन बनाते हूँ, खा लो खा लो खा लो। भगवान श्री राम कहते माँ पिता दिन मोहिकानन राजू, पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। ऐसे पूछे, पिता ने मुझे कानन का राज्य दिया है। कानन का राज्य दिया, तुम तो अयोध्या के राजा बनने वाले हो। अरे नहीं, हमें पिताजी ने वन का राजा बनाया। यह नहीं कि मुझे वनवासी बना दिया जो वन में भगा रहे हैं। कैकेयी का नाम ये नहीं लिए। इतने सुशील पुत्र, क्यों किसी का नाम लिया जाए? अगर उसके चलते क्रोध बढ़ता है, झगड़ा होता है, तो उसको नहीं कहना चाहिए। जो पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दिया है और सब तरह से मेरा मंगल है, और माँ मैं तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जंगल का दास मेरे लिए मुद मंगलमय हो, आनंदमय हो, और स्नेह बस तुम डरो मत, मैं बहुत सुख से रहूंगा तुम्हारे चरणों के आशीर्वाद से। मैं 14 वर्ष बहुत आसानी से पार कर लूंगा। बरस 4-10 विपिन बसी, कल्पित वचन प्रमाण, आए पाए पुनः देख हो मन जन कर से मलान। भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि बस कितना दिन वन में रहना है, 4-10, पहले 4 कहते हैं, 4-10, 4-10 वर्ष वन में बसना है पिता के वचन को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए। और आए पाए पुनः देखी हो, मैं फिर आकर के तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा। माँ तुम मन को खिन्न मत करो, दुखी मत हो, तुम आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा वनवास बहुत सफल रहेगा। और इतना सुनते ही तो माँ बिल्कुल हक्का बक्का हो गई। फिर वो देखी तो दूसरे लोग कोई आए थे, उनसे पूछी कि क्या बात है, क्यों राम वन में जाने को कहता है? तो वो लोग बताए कि ऐसी ऐसी बात है रानी जी, कैकेयी ने ऐसा वर मांगा है राजा दशरथ। तब अब कौशल्या की दशा हो गई, वहीं पर ये बात लिखी गई है, भय गति सांप छछुंदर केरी, धर्म समय भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। जब ये बात सुनी कि महाराज ने इसके पति ने वचन दिया था कैकेयी को और कैकेयी ने मांगा, तो अब तो कह भी नहीं सकती थी कि वन मत जाओ या रहो, बिल्कुल सहम गई, कुछ भी बोल नहीं पाई बेचारी। धर्म समय उभय मत घेरी, एक तरफ धर्म कि जब पति ने ऐसा वचन दिया है तो उनके वचन का पालन होना चाहिए, और स्नेह राम के प्रति, इस बच्चे को कैसे वन में भेजा जाए, इसको सह नहीं सह, दोनों कठिन हो गया उसके लिए। भयगत सांप छछुंदर के, ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप छछुंदर को ले ले मुंह में, तो यदि खाएगा तो मर जाएगा और उगल दे तो अंधा हो जाएगा। वो सांप छछुंदर की गति का, तो कौशल्या के लिए दोनों बातें ऐसी हो गई, कह नहीं सकती थी कि रुको मत जाओ, और यह भी नहीं कह सकती थी कि जाओ। राम जैसे सुशील पुत्र को वन में जाने के लिए कह देना ही कैसे हो सकता था? तो बहुत दुखित हो गई। भगवान जब कहते हैं कि आए पाए पुनि देखी हो मनजन करो सी मलान, नाम अपने मन को उदास मत करो, खिन्न मत करो, मैं जल्दी आकर के तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा, और तुम्हारे आशीर्वाद से मैं वन में भी बहुत महान बनूंगा। और वास्तव में सत्य बात है, माँ का आशीर्वाद लगता है बहुत सफलता पूर्वक। इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई राम के जीवन में, अपनी पत्नी चोरी चली गई अभी समुद्र के पार, लेकिन अगर मनुष्य की दृष्टि से देखिए तो ऐसा सफल व्यक्ति जो समुद्र के पार राक्षस राज के चंगुल में गई हुई अपनी पत्नी को ला दिया और समस्त राक्षसों का वध करके, ये बहुत बड़ी सफलता है। वैसे तो ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, उनके लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अपने नगर से निर्वासित एक मनुष्य जिसकी पत्नी को राक्षस रावण जैसा बलवान व्यक्ति ले जाए, और वह उसके नगर में जा करके उसकी सेना को राउंड करके अपनी पत्नी को मुक्त कर ले, यह अद्भुत आश्चर्य, अद्भुत सफलता है भगवान की। तो इस तरह से उस व्यक्ति के लिए सब कार्य सुचारू हो जाते हैं, सुकर हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता के आशीर्वाद को ग्रहण करता है, माँ चाहे जैसे भी हो उसका आशीर्वाद लगता ही है, आई तुझा आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद प्रत्येक व्यक्ति को कामना करनी चाहिए। आशीर्वाद कुछ साइंस है कि भगवान किसके किसके आशीर्वाद को सफल कर देते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा वनवास मुझ मंगलमय होगा, और कौशल्य ने आशीर्वाद भी दिया था, देव पितर सब तुम ही गोसाई राखन नान पलक की नाई, राख पलक नैन की नाई, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं इसी तरह से देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? साक्षात भगवान की रक्षा करें। यह स्नेह, देवता पितर तो सभी भगवान के नाम से ही मंगल करते हैं, लेकिन इस तरह की कामना करना कि देवता पितर सब उस तरह से तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है, आंख पर पलक बनी हुई है, किस तरह से धूल से या और आघात से रक्षा करती है सब देखते हैं। यदि आंखों के पास कोई पीन लावे आंख में धसाने के लिए कंट, तो पहले पलके में पलक में छेद हो जाएगी, उसके बाद ही आंख में पहुंचेगी। क्योंकि कोई कहे कि नहीं पलक हटाओ हटाओ, पलक हटती नहीं है, है ना, कोई आघात आता है तो तुरंत पलक बंद हो जाती। इस तरह से रक्षा करें। तो माँ कौशल्या का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम इस तरह के प्रत्येक गुरुजन के आशीर्वाद की कामना करते थे। वन में जब गए तो ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं था जिसके आश्रम में जाकर के चरण वंदना न कर रहे, और जबकि वो ऋषि उन्हीं का भजन कर रहे हैं, उनके इष्ट देव भगवान राम है, पर ये तो मनुष्य लीला करके सिखा रहे हैं कि मनुष्यों को ऐसे साधुओं का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हमेशा अपने हाथ में मीटर नहीं लेना चाहिए कि ये शुद्ध साधु है अशुद्ध है, ये है मायावादी है, ये है वो है, ये सब ठीक नहीं होता है। साधु है तो उसको प्रणाम करना ही चाहिए, हमेशा अपने मन के मीटर से मापना नहीं चाहिए, वो तो भक्त नहीं है, वो तो ये नहीं है, वो नहीं, सबसे बड़ा भक्त तुम ही हो गए हो। ये नियम है सामान्य। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे तो अपने घर पर वे साधुओं को बुलाते थे, कोई साधु स्वतः भी आते थे। तो श्रील प्रभुपाद जब बच्चा थे तो उनके पिताजी हमेशा कहते थे प्रणाम करो प्रणाम करो सेवा करो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि ये साधु है ये ऐसा है, प्रणाम करो, और कहते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र राधा रानी का भक्त बने। तो एक बार तो आशीर्वाद सबका निकलता ही था। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये भारत में हम लोग नियम देखते हैं, कोई पिता है माँ है तो अपने पुत्र को साधुओं को या बड़े लोग प्रणाम करने को कहती ही है, पिता भी कहते प्रणाम करो पगे लागो प्रणाम करो प्रणाम करो, प्रणाम में बहुत बड़ा गुण है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, माँ के साथ कैसे बोलना, यहाँ तक कि कैकेयी के साथ भी कितना प्रेम से बोल रहे हैं, जननी जननी शब्द कह करके बोलते हैं। और ये कहे कि तुम डायरेक्ट मुझसे कह दी होती कि वन में चले जाओ तो मैं चला गया था, पिता से क्यों कहा। इस तरह की बात बोल रहे हैं, और कहके से कहते हैं कि माँ तुम कुछ भी कहो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारे एक शब्द पर। इस तरह से उन्होंने राज्य का त्याग किया। राज्यम श्रीयम, श्री का अर्थ होता है धन, राज्य अलग चीज है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा है लेकिन राज छूट गया पर उसका कोष बचा हुआ हो या धन बचा हुआ, तो ऐसा भी नहीं। भगवान श्री राम ने राज्य छोड़ा, राजा नहीं बने, और श्री भी छोड़े। श्री का अर्थ है धन, धन छोड़े, ऐसा नहीं ठीक है वन में जा रहे हैं लेकिन दो चार करोड़ लेकर के जाएंगे, 14 बरस आखिर काम आएगा ना। और वो पिता से कह सकते थे कि ठीक है तो हमारा आधा बांट दीजिए, भरत को आधा राज दीजिए, चाहे जो कैश है वो तो दीजिए, लेकिन नहीं, एक पैसा भी भगवान लेकर के नहीं गए, राज्यम श्रीयम पूरा पूरा छोड़। और जब पिता ने कहा था, वचन दिया था, कैकेयी ने यही मांगा कि एक पैसा लेकर के ना जाए, कोई अच्छा कपड़ा पहन करके नहीं, बिना जूता के और जटा बना करके कंघी करके नहीं, ऐसे तपस्वी वेश में जाए। अब ध्यान रखिए, सीता जी गई थी भगवान राम के पास, लेकिन कभी भी 14 वर्ष के अंदर भगवान ने उनके साथ शयन नहीं किया, कभी नहीं, नियम पालन कर रहे थे। इसको कहते हैं निष्कपट अव्याज धर्म का पालन। धर्म पालन करना है तो कोई बहाना करके धर्म पालन में ढिलाई नहीं करनी चाहिए, अव्याज पालन करना है। तो भगवान श्री राम के लिए कैकेयी ने मांगा था कि ये वनवासी रहे, तो इसका मतलब शहर में गांव में ना रहे। भगवान ने ऐसा धर्म का निर्वाह किया कि जब वो वन में जाते थे तो बीच में जो गांव पड़ता था या नगर पड़ता था तो उसके भीतर से नहीं जाते थे, बाईपास बाहर से जाते थे, कभी भीतर नहीं गए। और एक दिन रुकने के बाद तो अलग रहे, तो थोड़े थके मांदे हैं तो चलें कहीं आराम कर लेंगे। लाखों लोग कहते थे आज यहाँ रुक जाओ, आज यहाँ रुक जाइए, आप रुक जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको खीर खिलाएंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। जानते नहीं थे कि तो खीर खाएंगे नहीं, तो वन के कंद मूल फल खाते खाएंगे। अयोध्या से जिस दिन निकले उस दिन से अन्न नहीं खाए भगवान, गेहूं चना या ऐसे कुछ भी नहीं, कंद मूल फल बस खाना चालू किए। तो मैं कह रहा था कि गांव में जब गांव के निकट आते थे तो गांव को चाहे राइट में छोड़कर या बाहर छोड़कर निकल जाते थे, यानी राइट में छोड़ते थे हमेशा, क्योंकि गांव में अनेक देवताओं के मंदिर थे, भगवान के भी मंदिर थे, तो उसको दाहिने परिक्रमा से छोड़कर के चले जाते, कभी गांव में प्रवेश नहीं किए। जब बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य देना था, तो भगवान ने लक्ष्मण को भेजा कि तुम जाओ राज तिलक कर दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वन में ही रहूंगा, कभी नहीं गए। जबकि राजा बने सुग्रीव, कितना सुखमय उनका क्वार्टर होगा, रेजिडेंस सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान राम जाकर 2 दिन आराम कर ले, बहुत थके मांदे हैं गुफा में रहते थे। जब धर्म का पालन करना है तो करना है, इस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे धर्म है जप करना, कम से कम 16 माला हम लोगों का जप करना धर्म है, मंगल आरती में आना धर्म है, और सब कई प्रकार के धर्म है, ये कर्तव्य। तो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आदमी बहाना कर देता है, सिर दर्द कर रहा है इसलिए मंगल आरती में नहीं जाएंगे। ये धर्म में अंतर इस तरह से होता है, धर्मांतर हो सकता है। धर्मांतर का मतलब होता है कि आप भोर में अगर मान लीजिए एक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो अगर दूसरे धर्म का पालन करने लगे, मतलब भक्ति के दूसरे अंग, तो चल सकता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोए रहे और कहे कि तबीयत खराब है ये है कपट धर्म का पालन। व्यक्ति को अपने अपने तरफ से उत्कंठा होनी चाहिए कि हमें इस जीवन में हमें करना ही है, करना ही है, करना ही है, भागवत पढ़ना है, जॉब करना है, और सब जो हमारे नियम है धर्म है उसका पालन करना है। भगवान श्री राम के लिए अनेक अवसर थे, अनेक अवसर थे, लाखों लोग कहते थे कि आप हमारे घर रुक जाइए, हमारे घर रुक जाइए, आपस में बातचीत भी करते थे कि कैसे इसके माता पिता है, कैसे घर छोड़ दिए उनको वन में आने के लिए, ते पितु मातु कहूं सकी कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे, ऐसे बच्चे को, सुंदर सुकुमार को कैसे वन में भेज दिए। बारंबार विनय करते थे, आप वन में मत जाइए, वन में मत जाइए, रह जाइए गांव में, क्या जरूरत है जाने की। बाद में पता चलता था कि इनके माँ ने, इनके पिता ने ऐसा आज्ञा दिया, तब वो लोग गाली देते थे, वो कैसी माँ है, कैसा बाप है नालायक कि इनको वन में भेजा। फिर ब्रह्मा को भी गाली देते कि यदि इनको वन में भेजना था तो बड़ा बड़ा नगर रच करके ब्रह्मा ने केवल परिश्रम किया, ये अगर वन में रहेंगे तो नगर में ये सब सारे लोफर भरे रहेंगे, नगर में तो इनको रहना चाहिए। और यदि वृक्ष के नीचे वास दिया विधाता ने इनको, तो बड़ा बड़ा अमरावती आदि में सुंदर सुंदर घर बना करके क्या किया, सब बेकार किया। और जंगली कंद मूल फल खाई बाद सुधा दिया सब जगमाही, और ये यदि कंद मूल फल खाते हैं तो ब्रह्मा ने फिर अमृत आदि क्यों बनाया, बेकार बनाया। इस तरह से ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। यहां तक कहते हैं स्त्रियां वन में कि विधिकर तब उल्टे सब है, आज तक ब्रह्मा ने जो कुछ किया है उल्टा किया। श्री राम और लक्ष्मण सीता जब वन में जा रहे हैं तो वो देख करके आश्चर्य करते हैं कि ब्रह्मा को क्या हुआ है, ऐसे सुंदर सुकुमार व्यक्ति को क्यों वन में भेज रहा है। तो सब आज तक तो जो भी किया उल्टा किया, समुद्र बनाया इतना जलराशि लेकिन खारा बना दिया, देखो उल्टा कर दिया। जब समुद्र बना रहा था तो उसके पास कोई इंटेलिजेंट आदमी होता तो कहता कि नहीं मीठा समुद्र बनाओ मीठा पानी, इतना समुद्र भरा हुआ है लेकिन एक घूंट भी नहीं पी सकते हैं, है ना। कुछ धनी लोगों की उपमा समुद्र से दी गई है नीति शास्त्र, समुद्र के पास इतना पानी है लेकिन एक बूंद कोई पी नहीं सकता। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन क्या मजाल कि कोई एक घूंट भी पी ले और बहुत मुश्किल है। हे कुपा तुम चिरंजीव, एक कवि कह रहे हे कुआ तुम चिरंजीवी रहो, स्वल्प तो बहुत व्यय, तुम्हारे पास बहुत कम जल है लेकिन व्यय बहुत होता है, जो भी आता है बाकर से निकालता है पीता है, जो भी आता है निकालता है पीता है। कुआं अच्छे हैं जिनका जल पिया जाता है और पानी आता भी रहता है, आता भी रहता है। लेकिन समुद्र को गाली दे रहा है कवि, धिक्कार है तुमको, तुम्हारे तट पर आया हुआ पथी प्यास के कारण छटपटा रहा है तो तुम एक बूंद भी पानी नहीं दे सकते हो, बल्कि उसके आंख से दो चार बूंद पानी तुमको ही मिल जाएगा, और जो रोएगा तो दो चार बूंद पानी वही दे दे समुद्र ऐसे ऐसे होते। कुछ ऐसे लोग हैं वास्तव में कृपण समुद्र, जिनका पानी बस ऐसे ही रहेगा, जीवन में किसी के काम नहीं आएगा, वो छोड़ देंगे मर जाएंगे, बाद में उसके लिए लोग झगड़ा करेंगे या सरकार लेगी चाहे कुछ भी होगा जो होगा हो। तो विधाता की उल्टी करनी है, स्त्रियां कह रही हैं आपस में कि देखो जब समुद्र बनाया तो खारा बना दिया, चंद्रमा को बना रहा था तो सकलंक बना दिया, उसमें काला धब्बा लगा दिया, क्या जरूरत थी करने की। कितना सुंदर गोलाकार चंद्रमा होता है तो उसमें धब्बा नहीं होता है। ब्रह्मा को यही करना ही है, कल्प वृक्ष बना रहा था, कल्प वृक्ष को कहते हैं कि इतना सुंदर फल देने वाला, मनुष्य का अभिष्ट पूरा करने वाला, लेकिन उसको पेड़ बना दिया, झाड़ बना दिया रूख कल्प तरु सागर खारा तही पठे बनराज कुमारा, उसी ब्रह्मा ने इनको वन में भेजा। कुछ स्त्रियां कहती जानती हो क्यों वन में भेजा, हमारे समझ से ये ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, लेकिन इनको देख करके ब्रह्मा इनके समान सुंदर बनाने की सोचने लगा लेकिन बना नहीं पाया, इसीलिए इनको वन में कर दिया कि कोई देखेगा ना उसकी बेइज्जती होगी। कि ब्रह्मा की बेइज्जती होगी कि ऐसा सुंदर बना नहीं सकता, तो वन में कर दिए, उधर कौन देखने वाला, बानर भालू बाघ रहते हैं तो हमारी भी बेइज्जती नहीं होगी। यही ईर्ष्या वन आनी दुराय, इसी ईर्ष्या से इनको वन में किया है और कोई दूसरा कारण नहीं। कोई कोई स्त्रियां कहती हैं, नहीं सखी, ये हम लोगों का सौभाग्य कुछ था कि इनका दर्शन हुआ, हम लोगों के भाग्य को संवारने के लिए विधाता ने इधर भेज दिया, हम लोगों का भाग्य है इतना सुंदर इतना तेजस्वी हम नहीं देखे थे। कोई कोई तो कहते हैं कि हमें तो लग रहा है कि साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, लेकिन दूसरी स्त्री कहते हैं साक्षात भगवान और बिना जूता के वन में जा रहे, भगवान कैसे हो सकता है। वो सुने हैं शास्त्रों में कि भगवान बहुत सुंदर है, खासकर भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि भगवान की नित्य लीला है भगवान कृष्ण की। आज के युग में प्रचार हो गया है, अगर भगवान का नाम लीजिए, ब्रह्म शब्द कहिए, तो लोग समझते हैं कोई शक्ति विशेष, कोई निराकार। इतना गलत प्रचार हो गया है कि मानव मस्तिष्क में यही बात भर गई है। लेकिन पहले के लोग भगवान शब्द या ब्रह्म शब्द कहिए तो उसका अर्थ कृष्ण समझते थे, एकदम सीधा समझ जाते थे। अब के लोगों को बहुत मीमांसा करके समझानी पड़ती है। पहले तो लोग यही पूछा करते समाज में कहीं जाइए, अच्छा आप भगवान को मानते हैं, कौन भगवान को मानते हैं, वैष्णव से पूछा करते हैं, भगवान भी दस बीस है क्या कि कौन भगवान को मानते हैं। लेकिन लोगों में ऐसी धारणा बन गई कौन भगवान को मानते हैं। पहले के लोगों में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं था, भगवान मैंने सीधा श्री कृष्ण एकदम क्लियर था, या भगवान विष्णु स्पष्ट बिल्कुल ये बात थी। ये भागवत पढ़ने से पता चलता है कि पहले के लोगों में कितना ज्ञान था और भगवान का कितना बड़ा रियलाइजेशन, कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब संदेह हो गया, तो वहां की स्त्रियां बात करती है कि साक्षात भगवान है, कोई कहते नहीं भगवान नहीं है, भगवान होते तो इस तरह से दिन दशा में जंगल में क्यों जाते। लेकिन उनके तेज और सौंदर्य को देख करके कहती है तो साक्षात भगवान है भगवान है भगवान। तो इस प्रकार भगवान अपने पिता के निर्देश का आदेश का पालन किए। मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं, एक तो आध्यात्मिक पहलू है और दूसरा है सामाजिक। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को सीधा अध्यात्म में ले जाती, सीधा, क्योंकि जीव कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण से संबंध रखना बस उसका सेवा करना, यही उसका स्वरूप है, तो उसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला में हम लोग देखते हैं छोड़ने की बात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया और जगत पूज्य हैं, कोई निंदा नहीं करता, सब लोग सराहना करते हैं, उद्धव जी ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी सब बहुत सराहना करते हैं, आशा महो चरण वेण जुषा महम श्याम वृंदा बने किमी गुण मिलता सुधीरा। उद्धव जी कहते हैं कि हे विधाता, आगे जब भी मेरा जन्म हो तो इस वृंदावन में हो कि गोपियों की, गोपियों का चरण रज मेरे सिर पर हमेशा पड़ता रहे। इतना प्रभावित हो गए, जो कि भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे बड़े विद्वान उस समय वही थे उद्धव जी, भगवान के डायरेक्ट मंत्री थे, सलाहकार थे सब, तो वे गोपियों की इतनी प्रशंसा करते हैं। तो भगवान की लीलाएं हैं विलक्षण, छोड़ने की लीलाएं, छोड़ो सर्व धर्मान परित्यज मामि कम शरणम, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। अर्जुन खड़े थे रथ पर युद्ध के समय, अपने स्वजनों को देखे तो सहज दया आ गई, नहीं इनको मारना पाप है, हम नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे। भगवान कहा मारो मारो, यही धर्म है। कुछ लोग तो कहते हैं आपके भगवान तो बहुत झगड़ा लगाते हैं। बताइए, वो बेचारा व्रत से उतर करके कहीं जाता, भीख मांगता, कुछ भी करता, तो उसको हिंसक बना रहे हैं। कहीं नहीं, मारो मारो मारो, और अंत में उनके बातों में आ गया, कहा कर इसे बचनम तब, और इसके बाद मारा। यही तो भगवान है ना आपके, ऐसे कहते हैं, यही आपके भगवान है। हम लोग कहते हैं, और उसके बाद सुने कितना सुंदर राज्य स्थापित हुआ। जिस बात की चिंता अर्जुन कर रहे थे कि इतने सैनिक मारे जाएंगे, योद्धा मारे जाएंगे, तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा स्त्रियों का दुरुपयोग भोग दूसरे लोग करेंगे, तो बड़ संकट पैदा होंगे, ये भय था अर्जुन को। लेकिन आप पढ़िए महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन, एक व्यक्ति भी व्यभिचारी नहीं था उनके राज्य, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। इतना सुंदर राज्य की स्थापना है भगवान कृष्ण के निर्देशन में, महाराज युधिष्ठिर का राज्य। अर्जुन जिन जिन बातों की शंका कर रहा है, तो एक भी नहीं हुई। तो भगवान तो भगवान है ना, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित। अब उनको कोई हिंसक कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो मर्म को जानते हैं, भगवान वेदव्यास देव सुखदेव गोस्वामी भीष्म पितामह, ये सब तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। तो दूसरे की स्त्रियों को उनके पति का त्याग करा करके और रात के समय नृत्य करना, कैसे लोग स्वीकार कर सकता है कि ये धर्म है? लेकिन बड़े बड़े लोगों ने तो कहा यही धर्म है, ये परम धर्म है जीव का, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण से प्रेम करना। तो ये पहलू है। और भगवान श्री राम की लीला में सामाजिक पहलू है कि कैसे सबको ले करके अनुकूल भाव से और अध्यात्म बढ़ाया जाए, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फेज है। भाई संसार में परिवार में संबंधियों से सारा मेल रखते हुए कैसे बढ़ाया जाए? बढ़ना तो अध्यात्म ही, मतलब भगवान से प्रेम करना है, जीवन का तो लक्ष्य यही है। लेकिन एक पहलू है कि जितना संभव हो सके सबसे अनुकूल भाव से रह करके, नम्र सुशील बन करके, निष्कपट जीवन बिता करके, और इस तरह भगवान की भक्ति की तरफ लगाया जाए। और एक है सब कुछ छोड़ करके, तो अलग अलग अधिकारी होते हैं सबके, सबको एक ही पथ पर नहीं चलाया जा सकता। जैसे कुछ लोग डायरेक्ट ब्रह्मचारी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो समाज के अनुसार चलते हैं, विवाह करते हैं, विवाह करके भी वो उसी पथ पर चल रहे हैं जिस पथ पर सन्यासी चल रहा है, लेकिन दोनों के कुछ स्थिति में स्वरूप में भेद होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण की लीला भगवान श्री राम की लीला से विरुद्ध है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। समझदार लोग समझ जाते हैं कि एक ही भगवान दो समय में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण क्यों कर रहे हैं, भगवान का कोई उद्देश्य है ना। एक तरफ तो रथ पर चढ़ करके भाइयों में झगड़ा लगा रहे हैं दुर्योधन आदि के प्रति, मारो मारो या ताई हैं बदमाश है सब, ऐसे कह रहे हैं। और वहीं पर जब अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके वन में चले गए, कोई झगड़ा नहीं, एक कपड़ा भी नहीं ले गए, एक पैसा भी नहीं ले गए, और प्रणय न, कितने अपने प्रेमियों को भगवान ने छोड़ा। जैसे माँ को, पिता तो मर ही गए बुजुर्ग में, कितने मित्र संबंधी थे जो वास्तव में भगवान राम से प्राण के समान प्रेम करते थे, लेकिन वो भी छोड़ दिया। सुहृद जो श्री राम का हित चाहते थे, मित्र थे, सहायक थे, उनको भी छोड़ दिया। ऐसे अगर वे चाहते तो उनके साथ 100-200 मित्र जा सकते थे, आराम से वन में रहते उनके साथ, लेकिन नहीं। जब पिता ने वचन दिया और कैकेयी ने मांगा है कि जाना चाहिए वन में, कोई मित्र हित नहीं होना चाहिए, तो ये प्रश्न होता है कि सीता और लक्ष्मण क्यों चले गए? सीता और लक्ष्मण को भगवान ले नहीं गए थे, ध्यान रखना चाहिए। सीता जी ने कहा कि मैं वहीं रहूंगी जहां आप रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आप उधर जाएंगे और इधर मैं मरूंगी, मैं रह नहीं सकती, तब क्या करें भगवान? अब मारे उसको तो सीता गई। लक्ष्मण जी भी कहे कि मैं अयोध्या रह ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, अगर हमको जबरदस्ती रखेंगे तो मैं निश्चित प्राण छोड़ दूंगा। पर दो लोग गए, राम ले नहीं गए, ले जाना दूसरी बात है और चला जाना और दूसरी बात। और सीता का तो सहज अधिकार था, पत्नी का सहज अधिकार था। जब भगवान ने सीता जी से कहा कि देखो मैं तो अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूं, तुम यहां रहो, सास ससुर की सेवा करो, मेरे विजोग में मेरी माता दुखी रहेगी तो उसको इतिहास पुराण की कथा सुनाना, सांत्वना देना। तो सीता जी ने कहा कि आप अपने पिता के आदेश से वन में जा रहे हैं, मेरे पिता जनक महाराज ने आदेश दिया है कि जहां पति रहे वहीं रहना, तो मैं अपने पिता के आदेश से वन में जाऊंगी। हमारे अवस्था में जनक महाराज ने आदेश दिया था बेटी पति की सेवा करना, सुख में दुख में कभी भी साथ मत छोड़ना, वो जहां रहे वहीं रहना, सब कहा था। तो आप अपने पिता के आदेश से चलिए और मैं अपने पिता के आदेश से चलूंगी। इसके पहले आपने हमसे कहा भी था कि प्रिय हम लोग कभी वन में निवास करेंगे, आध्यात्मिक जीवन बिताएंगे। ये सिटी लाइफ बहुत गंदा लाइफ होता है वास्तव, जितना भोग की सामग्रियां बना बना कर इधर घूमो, ये खाओ पियो भोगो, डांस बार ये वो, ये सब जंगल में तो चलता नहीं, ये सब शहर वालों के भाग्य में लिखा है, कूड़ा कचरा। जितना पाप जितना भोग मन गंदा करने वाला, तो पहले के समय में तो जंगल में सब कुछ मिलता था, मतलब ये फल कंद मूल आदि मिलता था और ऋषि लोग रहते थे। उस समय की दशा विचार किया जाए तो उस समय के उस वन के जीवन में और नगर के जीवन में बहुत अंतर था। अब तो सब वन दूषित हो गए, जहां तहां सब जवान मलेच्छ बस गए, पाप कर्म करने वाले भी सब वन में चले गए, वन काट दिया गया और कोई सुविधा नहीं, लेकिन पहले बहुत अंतर था। पर आज भी देखा जाए तो जो जितना ही बड़ा शहर है वहां उतना ही बहिर्मुखता है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हो गई कि उन्होंने शहरी लोगों को भी इस तरह से अवसर दिया इंगेज रहने का, भगवान की भक्ति करे, प्रचार करे, करे वो करे, तो उसमें वे फिट रहते हैं जब थोड़ा। लेकिन ऐसे तो ये केवल आत्मपात का स्थान है वास्तव, बहुत दोषपूर्ण। पर आज भी जंगल ऐसा है या गांव ऐसे हैं कि वहां पर ज्यादा संभावना रहती है, भगवान का अगर सत्संग मिले, कथाएं मिले, साधुओं का संग हो, तो उस स्थान पर मन ज्यादा अधिविष्ट हो सकता है कि भोगों के उपकरण और भोगों की सुविधाएं उधर नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे मोबाइल फोन है, तो अब थोड़ा बाहर जाइए तो नेटवर्क पकड़ेगा ही नहीं, है ना, तो बचे ना इस विपत्ति से। और किसी शहर में टावर बने हुए आते ही हाँ फिर माया की पकड़ चालू हुई। तो एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि इस तरह से नरक में जाने के लिए हर एक सुविधा शहर में है, हर एक सुविधा, लेकिन भगवान में चित्त लगाने के बहुत कम। वो तो कहीं के मान लीजिए यहाँ पर स्कैन सेंटर है तो ऐसे बड़े शहर में तो बिल्कुल नगण्य है ना। और जो भोग के उपकरण है, जो एडवर्टाइजमेंट है, होर्डिंग है, क्या क्या, तो भगवान श्री राम पहले ही कहे थे सीता से कि हम लोग वन में रहेंगे, जबकि उस समय नगर भी बहुत शुद्ध थे। ऐसे नहीं थे, नगर भी उस हिसाब से बहुत शुद्ध थे, फिर भी जो वन में ऋषियों के साथ भगवान की कथा श्रवण चिंतन, कितना शुद्ध जीवन था। भगवान राम पहले से कहते हम लोग रहेंगे वन में, तो सीता जी कहते हैं कि आप तो पहले कहे थे कि हम लोग वन में रहेंगे तो हमको भी ले चलिए। और पतिदेव मैं आपसे साफ कहती हूं कि मैं आपसे किसी शारीरिक सुख की आशा से नहीं चल रही हूं, बल्कि मैं आपकी सेवा करूंगी वहां पर, और आपके अध्यात्म मैं आपकी सहायता करूंगी, मैं भी भजन करूंगी, मैं भी कथा सुनूंगी, मैं भी जप करूंगी, हमको भी ये सौभाग्य दीजिए। वन में बहुत आनंद के साथ रहे, वन में गए रहे भी बहुत आनंद के साथ। भगवान सभी ऋषियों के पास बैठते थे, सत्संग करते थे, अनेक प्रश्न करते थे। इसी पंचवटी में नासिक में भगवान रहे 14 वर्ष, 12 वर्ष तो चित्रकूट में रहे और 2 वर्ष उन्होंने भ्रमण किया साउथ इंडिया में। तो यह बॉम्बे के बिल्कुल निकट आए थे, नासिक में रहते थे और वहां से इधर उधर यहाँ भी आए ही होंगे। वो तो उनका कुटीर था और वहां से घूम घूम करके राक्षसों का वध करते थे, ऋषियों को सुरक्षा देते थे। एक जगह पर ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, एक ऋषि ले जाकर के दिखाए दी। तो भगवान श्री राम ऐसे देखे तो पहाड़ दिखाई दिया, पहाड़ बहुत बड़ा। निकट आए तो भगवान ने देखा कि ये राक्षस ऋषि मुनियों को भक्तों को चबा चबा करके उनका मांस और चाम खा गए थे, हड्डी गांज दिए थे। तो मुनियों की हड्डी का पहाड़ दिख रहा था दूर से। वो देखते ही भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस शून्य कर दूंगा, और खोज खोज करके मारने लगे, जहां तहां खोज खोज करके मारने लगे। वास्तव में सूर्पणखा का जो नाक कान काटा गया तो वो चैलेंज दिया गया रावण को, किसी तरह से आवे झगड़ा करे और एक बहाना बना करके उसका वध करना है, कई लोगों का ऐसे वध करना। भगवान श्री कृष्ण भी 6 दिन के थे, उसी दिन से वध चालू किए, पुतना से चालू किया और लगातार करते ही रहे। यदि भगवान के सब लीलाओं पर विचार किया जाए तो मारने की लीला ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये खाल लोग बिना मारे ठीक नहीं होते हैं, कुछ भी नियम बनाओ नहीं मान सकते। तो भगवान श्री राम ने इस तरह की लीला किया। तो कल हम लोग सुनेंगे सीता हरण के प्रसंग को, हम यहीं पर विश्राम देते हैं, कुछ और कार्यक्रम है। आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद आप यहाँ आए सुनने के लिए। हरे कृष्ण।